अभिमन्यु ने नकुल को जेल भिजवा दिया था। इस बात से प्रशांत कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था। उर्वशी भी अभिमन्यु को सीधे सीधे उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने को कह रही थी। इन सब में नक्श का कोई अता पता नहीं था। जब से उसने राजवंश एम्पायर छोड़ा था, तब से किसी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं हुआ था। राजवंश एम्पायर अब अभिमन्यु और ऐशिका दोनों के लिए ही सुरक्षित नहीं रहा था। ऐशिका की प्रेगनेंसी के चलते सब यही चाहते थे कि वो फिलहाल के लिए राजवंश एम्पायर को छोड़ दे, लेकिन अभिमन्यु ने उनसे वादा किया कि वो अगले 24 घंटे में सब कुछ ठीक कर देगा। अभिमन्यु को अगले 24 घंटे में सब कुछ सही करना था। वहां से निकलने से पहले उसने उन सबसे कहा, हो सकता है मुझे रात को आने में देर हो जाए, लेकिन अब से ठीक 24 घंटे बाद इसी वक्त पर मैं उर्वशी और प्रशांत राजवंश को यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। ऐशिका ने पलकें झपकाकर अभिमन्यु की बात पर हामी भरी। ऐशिका के माथे पर किस करने के बाद वो वहां से चला गया था। अभिमन्यु के वहां से निकलते ही राधिका के पास एक कॉल आया, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर गए थे। कॉल पर बात करने के बाद उसने ऐशिका और वसुधा के पास आकर उसी परेशान लहजे में कहा, ऐसे लग रहा है जैसे सारी मुसीबतें एक साथ सर पर आ रही हैं। मालविका को उसकी खराब हेल्थ के चलते अस्पताल ले जाया जा रहा था। पता चला है कि वो रास्ते से कहीं भाग गई। हाँ, अब इसी की कमी बाकी रह गई थी, वसुधा ने उनकी बात पर सहमति जताते हुए कहा। फिर उन्होंने ऐशिका की तरफ देखकर आगे कहा, अभिमन्यु को फिलहाल इस बारे में बताना सही नहीं होगा। वैसे भी राजवंश विला की सिक्योरिटी काफी टाइट है, वो यहाँ तक नहीं आ पाएगी। बस तुम कमरे से बाहर मत निकलना। दादी, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे काम के लिए लैब जाना होगा। कब तक मैं घर में बंद होकर बैठ सकती हूँ? पुलिस भी न जाने क्या कर रही है। पहले आयशा फरार हो गई तो अब मालविका। ऐसा लग रहा है ये जैसे किसी की सोची समझी साजिश है। कहीं इस बार फिर से उर्वशी और प्रशांत राजवंश तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना? ऐशिका ने शक जताते हुए कहा। हो भी सकता है, ये अभिमन्यु पता लगा लेगा, राधिका ने जवाब दिया। मालविका के बाहर आने का सुनकर वो भी परेशान हो गई थी। उसने ऐशिका से कहा, आंटी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा, आई अग्री विथ हर। हाँ, हम जानते हैं तुम घर पर नहीं रह सकती, पर फिलहाल तुम्हारा बाहर निकलना सेफ नहीं है। अभिमन्यु भी आज के दिन बिजी रहने वाला है। ऐशिका ने भी ज्यादा जिद नहीं की, उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है माँ, लेकिन सिर्फ आज के लिए, क्योंकि अभिमन्यु बिजी है। आप लोग बातें कीजिए, मैं अंदर हूँ। ऐशिका अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी, क्योंकि वैसे भी उसे थोड़ी रिसर्च करनी थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु ऑफिस पहुंचा। ऑफिस जाते ही उसने सबसे पहले पृथ्वी को अपने केबिन में बुलाया। उसके आते ही अभिमन्यु ने सख्त अंदाज में पूछा, नक्श का कुछ पता चला? तुमने उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया है? नहीं, मेरी उसके ऊपर पूरी नजर है। राजवंश एम्पायर से निकलते ही वो सबसे पहले अपने अपार्टमेंट में पहुंचा था। कुछ देर वहां रेस्ट करने के बाद, रात को क्लब में काफी सारी शराब पीने के बाद, वो वहीं पर रूम बुक करके सो गया था। सुबह नींद खुलने पर वापस अपने अपार्टमेंट चला गया और अभी भी वहीं पर है। पृथ्वी ने नक्श के बारे में सब कुछ बता दिया था। अभिमन्यु ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर कुछ पल रुककर बोला, नकुल राजवंश का केस किस लॉयर के पास गया है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसे कोई लॉयर ना मिले, कोई उसका केस लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पुलिस की तरफ से उसे एक लॉयर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बट डोंट वरी, उसे जो लॉयर मिलने वाला है उसे मैं हमारे फेवर में कर लूंगा, बस थोड़े पैसे ही तो देने हैं, पृथ्वी ने बेपरवाही से कहा। वो जानता था कि अभिमन्यु भी कुछ ऐसा ही करने को कहेगा, इसलिए वो पहले ही अपने प्लान के साथ तैयार था। उसकी सारी तैयारी देखकर अभिमन्यु ने एक न दिखने वाली स्माइल के साथ कहा, वेरी गुड, नक्श और नकुल राजवंश की तरफ से मुझे फिलहाल सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ज्यादा दिनों तक नकुल को जेल के अंदर नहीं रख पाएंगे। वो कंपनी के पैसे चुका देगा, ऐसे में फ्रॉड करने के मामले में उसे ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 साल की सजा होगी। कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से वो उम्र भर जेल में सड़ता रहे। हाँ, मैंने उसके इंतजाम देख लिए हैं, बस थोड़ा टाइम दीजिए, पृथ्वी बोला। ऐसा नहीं था कि नकुल राजवंश कोई अच्छा इंसान था या उसने कोई गलत काम नहीं किया था, बस फर्क ये था कि पैसों की आड़ में वो अब तक छुपा हुआ था। अब वक्त आ गया था जब अभिमन्यु उसे उसके किए हर गुनाह की सजा देने वाला था। नकुल और नक्श की बात के बाद अभिमन्यु को प्रशांत और उर्वशी के बारे में सोचना था। उसने अपनी फैमिली से 24 घंटे का टाइम ले तो लिया था, लेकिन प्रशांत को राजवंश विला से निकालना आसान नहीं था। एक बार के लिए उर्वशी तो फिर भी नक्श के चलते राजवंश विला से उसके पास रहने जा सकती थी, पर प्रशांत बहुत जिद्दी था। अभिमन्यु ने कुछ देर सोचा और फिर पृथ्वी से बोला, फिर ऐसा करो कि मेरे टाउन जाओ और छोटे दादू को गोवा लेकर पहुंचो, अब वही हैं जो प्रशांत राजवंश को राजवंश विला से निकाल सकते हैं। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से चला गया था। इस बीच अभिमन्यु ने अपना मोबाइल निकाला तो उसे मालविका के जेल से भागने की खबर मिली। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी चलकर खुद ब खुद सामने आ जाती है।
अब इसे किसने जेल से बाहर निकाला होगा? अभिमन्यु ने सिर पकड़कर कहा। फिलहाल उसके पास मालविका के बारे में सोचने को ज्यादा टाइम नहीं था। नकुल और नक्श के जाने के बाद कंपनी में थोड़ी उथल पुथल हो गई थी। अभिमन्यु उसे संभालने में लग गया। दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह में मालविका को कुर्सी से बांधा गया था। जब उसे गाड़ी में खींचा गया था तो उसे बेहोश कर दिया गया था। जब मालविका को होश आया और उसने इधर उधर देखा तो उसे आसपास कोई नजर नहीं आया। मालविका ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें कसकर बंद की और फिर तेज आवाज में चिल्लाई, मुझे पता है कि तुम ही मुझे यहाँ लेकर आए हो अभिमन्यु राजवंश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम चाहे मुझे कैद करने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी की जान ले लूंगी। तुम लोगों की वजह से मेरी आयशा की जान गई है। उस मासूम की क्या गलती थी जो तुम लोगों ने उसे इतनी बेरहमी से मार डाला? देखना, तुम भी अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी। इशिका, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। और ये मालविका अपने गुस्से में इशिका को बद्दुआ देने जा रही थी, लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही किसी ने उसके गाल पर कसकर तमाचा लगाया और मालविका के शब्द उसके गले में अटक कर रह गए थे। मालविका का चेहरा दूसरी तरफ झुका हुआ था। अचानक कमरे में तेज लाइट हुई तो उसने चौंधियाकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मालविका ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने केशव राजवंश हाथ बांधे खड़ा हुआ था और इस वक्त उसके चेहरे के भाव बेहद सर्द थे। मालविका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी केशव ने उसका मुंह पकड़कर दबाते हुए कहा, मेरी बेटी की जिंदगी तुम लोगों ने नरक कर दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम उसे भला बुरा कहे जा रही हो। अगर एक और शब्द निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। ऐसा नहीं था कि मालविका केशव को जानती नहीं थी, पर उसे ये नहीं पता था कि इशिका केशव और राधिका की बेटी है। तो आप उस लड़की के बाप हो? मालविका ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, वो मेरी बेटी है, और अगर पहले पता होता तो सच कह रहा हूँ, तुम्हारे और आदर्श के किए की ऐसी सजा देता कि तुम दोनों कब के अपनी उस बेटी के साथ मर चुके होते। शुक्र मनाओ कि वो आसानी से मर गई, वरना उसने जो मेरी बेटी के साथ किया था उसके बाद मैं उसे और भी बुरी मौत देता, केशव ने उसे धमकाते हुए कहा।
मालविका ने अपना थूक निगला। उसने काफी बार केशव की बहरहमी के बारे में आदर्श से सुना था। मालविका पहले ये जरूर जानती थी कि इशिका आदर्श की बेटी नहीं है, पर उसे ये पता होता कि वो केशव की बेटी है तो वो कभी उसे चुराने का साहस नहीं दिखा पाती। कुछ देर उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति छाई रही, फिर मालविका ने उसकी तरफ देखकर कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं? मुझे इस तरह क्यों बंद कर रखा है? मेरी बेटी को तो पहले ही उन लोगों ने मार दिया है। आप क्या चाहते हैं, कि मैं अपनी बेटी कातिल को कोई सजा भी ना दूं? मेरी बेटी ने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है, उल्टा तुम लोगों ने मिलकर उसे इतने दर्द दिए हैं। राधिका तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। तुमने मेरी बेटी को मारा और उसके साथ बुरा किया ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली टॉर्चर क्या होता है, केशव गुस्से में बोला। उसका चेहरा देखकर मालविका को डर लगने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि साक्षात मौत उसके सामने खड़ी है। मालविका एक शातिर औरत थी, वो उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। ये सब आदर्श की सोची हुई साजिश थी। मैंने उसका साथ दिया तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। कौन माँ अपनी बेटी का अच्छा भविष्य नहीं चाहती है? आप राधिका को जाकर कुछ नहीं पूछते? इतनी बेपरवाही की कि उसकी एक बेटी को बदल दिया गया तो दूसरी बेटी को आदर्श ने फेंक दिया था, मालविका ने अपनी सफाई में कहा। आदर्श के अलावा मालविका भी इस बात को जानती थी कि राधिका ने उस वक्त जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। उसकी बात सुनकर केशव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। जब दिल्ली में अभिमन्यु ने इशिका के जिंदा होने की सच्चाई सबको बताई थी, तब उसने इशिका की जुड़वा बहन की कहानी सुनाई थी। उस वक्त केशव को यही लगा था कि अभिमन्यु इशिका को सबसे बचाने के लिए एक झूठी कहानी सुना रहा है। तुम झूठ बोल रही हो, केशव ने अविश्वास से कहा। तो क्या आपको सच में नहीं पता कि राधिका की जुड़वा बेटियां हुई थी? पहले वो इस बारे में नहीं जानती थी, लेकिन अब तो उसे पता हो जाना चाहिए। इशिका की जगह जिस लड़की की लाश आई थी उसका डीएनए राधिका से मैच करता था। क्या तब भी आपके दिल में कोई सवाल नहीं उठा मिस्टर सिंघानिया? मालविका ने अपना बचाव करते हुए कहा। जेल में रहते हुए भी वो उनकी पूरी खबर रख रही थी। पहले राधिका ने केशव से इशिका के अपने बेटे होने की सच्चाई छुपाई, तो फिर जुड़वा बेटियों का सच। इन सब से केशव का गुस्सा राधिका के लिए बढ़ गया था। फिलहाल उसने मालविका को यहीं पर छोड़ा और तुरंत वहां से राधिका से बात करने के लिए निकल गया था। अगर मेरी किस्मत में मौत और बर्बादी लिखी है तो सस्ते में तो तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी राधिका सिंघानिया। तुमने हमेशा मेरी खुशियां बर्बाद की हैं, तो अब तुम्हारी बारी है। ये इंसान अपने गुस्से में कभी कुछ नहीं सोचता है। जब तक ये तुम पर अपना गुस्सा निकाले, तब तक मुझे यहां से बाहर निकालने के बारे में सोचना होगा, मालविका ने मन ही मन कहा। उसने अपनी मुसीबत फिलहाल के लिए राधिका के गले डाल दी थी और खुद वहां से निकलने का तरीका ढूंढने लगी।
ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। अगले चैप्टर पर मिलते हैं। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि कहानी के अब ज्यादा पार्ट्स बचे नहीं हैं, तो एक एक करके जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो खत्म हो जाएंगे और हम कहानी को हैप्पी एंडिंग की तरफ लेकर जाएंगे।